आरवी उनकी बात सुनकर रुक गई। अंशु को उन्होंने पहले ही सुभाष जी के पास भेज दिया था, अब वहां सिर्फ वो और आरवी ही थीं। अर्पिता जी उसे लेकर आगे बढ़ते हुए बोली, चलिए अब हम आपको अपने परिवार के बारे में बताते हैं, जो अब से आपका भी परिवार है। हमारे घर में बस 5 लोग रहते हैं, अंशिका, शान और हमसे तो आप मिल चुकी हैं, और ये भी समझ गई होंगी कि हम शान की माँ नहीं, बड़ी माँ हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि उनकी माँ कहाँ है, तो हम आपको इस बारे में बाद में सही वक्त आने पर बता देंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि हमने ही शान को पाला है, और आपको गलती से भी शान के सामने कभी उनकी माँ का जिक्र नहीं करना है। ये समझ लीजिए कि उनको अपनी माँ से नफरत है, वजह अभी हम आपको नहीं बता सकते। अंशु की माँ का जिक्र भी मत कीजिएगा उनके सामने। आज तक हम भी नहीं समझ पाए कि अंशिका की माँ कौन है, पर हम इतना जानते हैं कि अंशु में शान की जान बसती है। उनकी एक छींक पर वो सब छोड़कर उनके पास पहुँच जाते हैं। आज अगर शान जिंदा है तो शायद सिर्फ अंशिका की वजह से। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, इसलिए वो इतने सख्त हो गए हैं। औरत के हर रूप से इन्हें कड़वी यादें मिली हैं, इसलिए अब इन रिश्तों पर उन्हें विश्वास नहीं है। पर हमें विश्वास है कि जल्दी ही आप उनके दिल में अपने लिए जगह बना लेंगी। उनके दिल में जो जहर भरा है औरतों को लेकर, उसे अपने प्यार से मिठास में बदल देंगी। उन्हें रिश्तों के मायने समझाएंगी। हर औरत धोखेबाज नहीं होती, इसलिए सिर्फ आप उन्हें विश्वास दिला सकती हैं। आपको उनके लिए से सभी बुरी यादों को मिटाना होगा। ये आसान नहीं होगा, पर हमें विश्वास है कि आप ये कर लेंगी। फिर हम तो हैं ही आपके साथ। अब तो आपको यहीं रहना है, तो हम धीरे धीरे आपको सब बता देंगे। अभी हम आपको आपके ससुर जी से मिलवाने लेकर जा रहे हैं। आपके बड़े पापा तो काम से बाहर गए हैं, कल तक आएंगे। अभी आपको भाई साहब से मिलवा देते हैं। इन्हीं बातों में वो उस कमरे तक पहुंच गई जहां सुभाष जी रहते थे। आरवी के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत सी उलझने, सवाल, पर अभी वो खामोशी से उनके साथ चलती रही। उन्होंने दरवाजा खोला और उसे लेकर अंदर चली गई। अंदर सुभाष जी अंशिका के साथ बात कर रहे थे। जब दरवाजे के खुलने की आवाज उनके कानों में पड़ी तो उन्होंने सर घुमाकर देखा। अर्पिता जी के पीछे आती आरवी पर जैसे ही उनकी नजर पड़ी, वो उसके चेहरे को बड़े गौर से देखने लगे, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहे हों। आरवी तो नजरें झुकाए उनके पास आ रही थी। जैसे ही अर्पिता जी उनके पास पहुंची, सुभाष जी ने आरवी को देखते हुए उनसे सवाल किया, भाभी ये बच्ची कौन है? आज से पहले तो इन्हें कभी नहीं देखा। अभी बताते हैं, पहले आप बताइए आपको ये कैसी लगी? अर्पिता जी ने बदले में उन्हीं से सवाल कर दिया। तो उन्होंने आरवी को गौर से देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, बहुत प्यारी बच्ची है। ऐसा लग रहा है जैसे सालों पहले की सावित्री हमारे सामने आकर खड़ी हो गई हो। वही भोलापन, वही सादगी और उन्हीं के जैसी सुंदर। उनके चेहरे पर अलग ही चमक थी और लब के साथ साथ आंखें भी खुशी से मुस्कुरा रहे थे। आरवी उन्हें असमंजस में देखने लगी, तो अब अर्पिता जी ने उसकी तरफ घूमते हुए कहा, आरवी बेटा अपने ससुर जी मतलब डैड के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लो। आरवी उनके कहने पर चुपचाप उनकी बात मान गई और झुककर उनके पैर छू लिए, पर वापस सीधी खड़ी नहीं हुई, क्योंकि सुभाष जी ने अब तक उसे आशीर्वाद नहीं दिया था। वो तो अर्पिता जी की बात सुनकर हैरान परेशान से उन्हें देखने लगे थे। उनकी आंखों में झलकते सवाल को समझकर अर्पिता जी ने मुस्कुराकर कहा, आपके शान की पत्नी है ये, आपकी बहू। शादी अजीब हालातों में हुई, समझ लीजिए कि ये हीरा किसी और के घर का होने वाला था, पर नसीब ने इन्हें हमारी बहू बना दिया। कल रात को शादी हुई थी, बस हम और शान ही थे वहाँ। आप तो जानते हैं अपने बेटे को कितना सख्त बनाया हुआ है उन्होंने खुद को। वो तो अभी इस शादी को मानते भी नहीं, पर हमें पूरा विश्वास है कि जल्दी ही वो दिल से इस रिश्ते को अपना लेंगे। बहुत प्यारी बच्ची है, पल में सबका मन मोह लेते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको अपनी बहू पसंद आई होगी। देखिएगा, जब आप इन्हें जानने लगेंगे तो आपको भी इनसे प्यार हो जाएगा। अब अपनी बहू को आशीर्वाद दीजिए कि वो इस घर को और आपके खड़ूस बेटे को संभाल सके। यस दादू, मम्मा ना बहुत अच्छी है, अंशु को बहुत लव करती है, पर डैडी ना मम्मा से नाराज है, इसलिए वो मम्मा से बात नहीं कर रहे, पर मम्मा बहुत नाइस है। आप मम्मा से बात करेंगे ना? उनके चुप होते ही अंशिका ने आरवी की सिफारिश कर दी, तो अर्पिता जी मुस्कुरा उठी। सुभाष जी ने पहले अंशु को देखा और आंखों में चमक लिए उन्हें देख रही थी, फिर उन्होंने आरवी को देखा जिसने अब भी उनके पैर छुए हुए थे। उन्होंने धीरे से अपना हाथ उठाकर उसके सर पर रख दिया और मुस्कुराकर बोले, सदा खुश रहो, हमें भाभी पर पूरा विश्वास है। अगर उन्होंने आपको हमारे शान के लिए चुना है तो आप उनके लिए बिल्कुल सही जीवन साथी होंगी। शान दिल के बुरे नहीं है, उनके अंदर जो कड़वाहट भरी है उसकी वजह हम हैं, उनका अतीत है। हमें उम्मीद है कि आप उनके दिल से इस कड़वाहट को हमेशा के लिए मिटा देंगी। महादेव हमेशा आपका साथ दे, आप बिल्कुल सावित्री की परछाई है। उन्होंने हमारी जिंदगी में आकर उसे खुशियों से भर दिया था, फिर जब गईं तो अपने साथ साथ हमारी सारी खुशियां और जीने की वजह भी ले गईं। पर आप हमसे वादा कीजिए कि आप हमारे बेटे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने अपना हाथ उसके आगे बढ़ा दिया।
आरवी उनकी बातों को बड़े गौर से सुन रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने उससे प्रॉमिस करने को कहा तो आरवी उनकी हथेली को देखते हुए सोच में पड़ गई। अर्पिता जी ने उसे खामोश देखा तो उसके कंधे पर हाथ रख दिया। आरवी ने सर घुमाकर उन्हें देखा, फिर सुभाष जी को देखा, जिनकी आंखों में अजीब सा सूनापन और दर्द छलक रहा था और वो उसी को देख रहे थे। आरवी ने अब उनकी हथेली पर अपनी हथेली रखते हुए कहा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कभी उनका साथ नहीं छोड़ूंगी। अब से ये घर और ये परिवार ही मेरा सब कुछ है। मैं हर रिश्ते को अपनी आखिरी सांस तक दिल से निभाऊंगी। उसकी बात सुनकर सुभाष जी और अर्पिता जी मुस्कुराने लगे। आरवी खामोशी से खड़ी कुछ सोचती रही, फिर उसने कुछ देर रुक कर कहा, डैड आपसे कुछ पूछूं? पूछो बेटा, आपने हमें डैड कहा है। आज से आप हमारी बहू के साथ साथ हमारी बेटी भी हैं और आपको हमसे कुछ भी पूछने की हक है। उसके लिए आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। सुभाष जी ने मुस्कुराकर उसको सवाल पूछने को कह दिया। आरवी कुछ पल सोचती रही, फिर उसने सवाल किया, डैड आप यहाँ इस कमरे में क्यों बैठे हैं? मतलब आप बाहर क्यों नहीं आए और यहाँ इतनी मशीनें क्यों रखी हैं? क्या आप बीमार हैं? उसने उनके बेड के पास रखी मशीनों और दवाइयों को देखकर सवाल किया। उसके सवाल को सुनकर सुभाष जी का चेहरा मायूस हो गया। उन्होंने भारी गले से कहा, हम बीमार हैं बेटा, एक ऐसी बीमारी है हमें जिसका कोई इलाज नहीं है। हम तो मरना चाहते हैं, पर शान के लिए खुद को जिंदा रखे हुए हैं और जी रहे हैं किसी तरह। ये जिंदगी जो हम पर बोझ बन गई है, हमारी तो जीने की इच्छा कब की हमारा साथ छोड़ गई है, पर हमारे प्राण हमारे देह को जीवन के इस माया जाल से मुक्ति नहीं करते। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं डैड? आप तो इतने अच्छे हैं, इतना अच्छा परिवार आपके पास है जो आपको बहुत प्यार करते हैं, फिर आप जीना क्यों नहीं चाहते? जानते हैं बहुत जन्मों के बाद इंसान का जन्म मिलता है, उसे यूं बर्बाद नहीं करना चाहिए। चाहे कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आए, पर इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।
भगवान तो हमारी परीक्षा लेते ही रहते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जिंदगी को जीना ही छोड़ दें। मुझे तो आप कहीं से बीमार नहीं लगते। जरूर आप खुद को इस कमरे में बंद रखते हैं ना और ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं, तभी आप खुद को बीमार लगते होंगे। अब मैं आ गई हूँ ना, देखना कैसे मैं आपको ठीक कर देती हूँ। आप मेरे साथ बाहर चलेंगे, ठंडी हवा को महसूस करेंगे, तो ये सब नेगेटिव बातें आपके दिमाग से बाहर निकल जाएंगी। आरवी ने उनकी फिक्र जताते हुए उन्हें समझाया। उसकी बात सुनकर सुभाष जी ने मुस्कुराकर कहा, हम चल नहीं सकते बेटा। उनकी बात सुनकर तो जैसे आरवी को झटका सा लगा। वो हैरानी से पहले उन्हें फिर अर्पिता जी को देखने लगी, तो अर्पिता जी ने मायूस होकर कहा, हाँ बेटा भाई साहब चल नहीं सकते। उनकी कमर के नीचे का भाग पैरालाइज्ड है। शान ने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, सालों से इलाज चल रहा है पर अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। एक कार हादसे में भाई साहब ने अपने चलने फिरने की शक्ति खो दी। उसके बाद से उन्होंने खुद को इस कमरे में कैद कर लिया। बहुत कोशिश की हम सब ने, पर वो कभी बाहर जाने को तैयार ही नहीं हुए। आरवी खामोशी से उनकी बात सुनती रही। अर्पिता जी चुप हुई तो आरवी ने सुभाष जी को देखकर गंभीरता से सवाल किया, डैड क्या आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं? इसमें मानने वाली क्या बात है बेटा, आप हमारी शान की पत्नी हैं, हमारी बहू हैं। हम आपको अपनी बेटी नहीं मानेंगे तो और क्या मानेंगे? हम तो बहुत खुश हैं। पहले बस अंशु थी जिनसे हम बात कर लिया करते थे, पर अब तो हमें एक प्यारी सी बेटी भी मिल गई है। उन्होंने मुस्कुराकर उसके गाल को छुआ। आरवी ने अब उनकी दोनों हथेलियों को थाम लिया और आगे बोली, डैड मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है पहले, क्यों आप जीना नहीं चाहते, कुछ भी नहीं जानती मैं। और जब तक आप खुद मुझे नहीं बताते, मैं आपसे कुछ पूछूंगी भी नहीं। पर डैड अगर आप मुझे सच में अपनी बेटी मानते हैं तो क्या मेरी एक बात मानेंगे? कहिए बेटा, उन्होंने उसको आगे कहते को कहा। आरवी कुछ देर खामोश रही, फिर उसने आगे कहना शुरू किया, अब से मैं जो भी कहूंगी आपको वो सब करना होगा। मरने का ख्याल भी आप अपने दिल में नहीं लाएंगे। मैं एक बार अपने पापा को खो चुकी हूँ, इतने सालों बाद मुझे फिर से पापा का प्यार महसूस करने का मौका मिला है और मैं इस प्यार को या आपको खोना नहीं चाहती। जानती हूँ मैं आपसे अभी अभी मिली हूँ, पर मुझे आप बहुत अच्छे लगे, बिल्कुल मेरे पापा जैसे हैं आप, बस वो इतने नेगेटिव नहीं थे। पर कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, देखना बहुत जल्द आप अपने पैरों पर खड़े भी होंगे और आपके दिमाग से ये सारी गंदी बातें भी निकल जाएंगी। एक बार आपके दिमाग से ये बातें निकल गई तो आप जल्दी ही एकदम ठीक हो जाएंगे और अंशिका के साथ दौड़ दौड़ कर खेलेंगे भी। बताइए मानेंगे ना अपनी बेटी की बात? वो आस भरी नजरों से उन्हें देखने लगी। सुभाष जी के लबों पर मुस्कान फैली हुई थी। उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, जब हमारी बेटी इतने प्यार से हमसे कुछ मांग रही है तो हम उनका नाजुक दिल कैसे तोड़ सकते हैं? हम आपकी सारी बातें मानेंगे बेटा, आप बिल्कुल सावित्री की परछाई हैं। हम चाहकर भी कभी आपको दुखी नहीं कर सकते। अब तो हम भी जीना चाहते हैं, अपनी बेटी को खुशी से जीवन जीते देखना चाहते हैं। ये हुई ना बात, देखिएगा मैं आपकी इतनी सेवा करूंगी कि आप जल्दी ही एकदम ठीक हो जाएंगे। आरवी का चेहरा खिल उठा उनकी बात सुनकर। वहीं अर्पिता जी उसको गर्व भर मुस्कान के साथ बोली,
आप अपने व्यवहार से हमारे विश्वास को और भी पक्का करती जा रही हैं कि हमने आपको इस घर की बहू बनाकर और शान की जिंदगी में शामिल करके बिल्कुल सही फैसला लिया है। उनकी बात सुनकर कंचन हल्का सा मुस्कुरा दी। अब रूम का दरवाजा खुला और नर्स ने अंदर कदम रखा तो अर्पिता जी ने उसे देखते हुए कहा, आप इनका ध्यान रखिए, हम अभी आते हैं। वो आरवी और अंशु को अपने साथ ले गईं। आरवी को उन्होंने अब उन कंगनों को पहनने के लिए उसे कमरे में भेज दिया और खुद खाने का इंतजाम देखने चली गईं। साथ में अंशिका भी थी।